कैसा लग रहा है मधुबन में? क्या? अच्छा अच्छा तो है ही ना, खाना बनाना पड़ रहा ना, बच्चों को तैयार करना पड़ रहा, और क्या चाहिए? क्यों विमला बहन, इससे सुख कहाँ मिलेगा? तो ठीक है, क्या अच्छा लगा? महेंद्र ना, वीरेंद्र बोलो, क्या अच्छा लगा? एक तो कुछ अच्छा लगे ये पता हो, अब एसी में बैठ जाते हैं तो ठंड तो हो ही जाती है। यहां भी क्या क्या अच्छा लग रहा है, यहां तो एसी है, स्थूल में भी ज्यादा गर्मी नहीं, हालांकि दो तीन दिन से हो गई है, लेकिन वाइब्रेशंस में तो शीतलता है। हमें वो मिल रहे हो, संसार की सबसे पावन भूमि कहेंगे ना, यहां सभी आ गए हैं। ये जो बेल्ट है ना, देखो हमारी बेल्ट है, ये क्या है, झोंपड़ी, झोंपड़ी से और शांति स्तंभ तक अगर सड़क बना दी जाए 15 फुट चौड़ी, तो इस 15 फुट चौड़े रास्ते पर संसार के सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, इस जैसे कहीं नहीं। तो ऐसे स्थान पर अपनी उन्नति का मार्ग सदा के लिए ढूंढ लेना चाहिए। यहां तो आनंद है ही, पर सदा के लिए हमारी स्थिति महान रहे, एक बात। दूसरी, अपने में कोई विशेष चेंज करके ही जाना है, विशेष चेंज। ये नहीं अपने को बदलेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, पर क्या क्या बदलना है स्वयं में, इसका एक लक्ष्य लेकर, जो बदलना है वो क्या भी कैसे बदलना है। कभी कभी मनुष्य तो सोचता रहता है कि बदलना है, लेकिन कैसे? दो चीज और मुझे कहनी टॉपिक से पहले, अब और आने वाले समय में सुखी वही मनुष्य रहेगा। अब हम ब्राह्मणों की बात करें, दुनिया तो अलग, सुखी वही ब्राह्मण रहेंगे जो सब कुछ स्वीकार करके चलेंगे, जो होगा जो हो रहा है मेरे साथ, परिवार के साथ, संसार में, देश में, उसे स्वीकार करके चलना। सहज काम नहीं है, काम बहुत भारी है। ऐसा ऐसा हो रहा है जो मनुष्य ने सुनना चाहता, देखने की तो बात बहुत भारी होती है, और इससे अति भयानक होगा। कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं, खुशी से नहीं। स्वीकार करने के पीछे हमारे पास क्या रहस्य हो, ड्रामा का कौन सा रहस्य? हाँ, आप तो बड़े भारी रहस्य जानते हो भाई, बताओ। माताओं का ज्ञान तो छलकने लगा, अब भाई लोग बताओ। हाँ अच्छा, इधर रख दिया, इधर का उतार दिया। नहीं, रखा तो दोनों पे ही है, उनका कलश थोड़ा सा बड़ा है। ड्रामा का ज्ञान बहुत गुह्य है, ड्रामा की बात है। एक तो ये जो कुछ होगा अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी लगता तो ऐसा है ना कि अच्छा नहीं हो रहा है, वो तो मनुष्य बाद में सोचता है कि हो सकता है कुछ कल्याण हो जाए। इसलिए लंबे समय से हमें ड्रामा की कुछ बातों की अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो हो रहा है यही तो होना है। अब जब दुनिया पावन बनेगी तो पतित दुनिया का होगा ही ना विनाश। इसी दुनिया को स्वर्ग बना दे बाबा, सब यहीं रहो, तो स्वर्ग भी 50 साल में फिर नर्क बन जाएगा। दूसरी बात, सबको घर जाना है तो सोचो हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। चुकतू कैसे करती है कोई आत्मा, किसी का भारी है किसी का हल्का, किसी के पाप ज्यादा है किसी के कम, उन्हें सब कैसे चुकतू करते हैं ये खेल भी देखना है। और अगर हमारा कोई अति प्रियजन हो और हम उसे चुकतू करते देख ही नहीं सकते, होता है ना ऐसा, कोई व्यक्ति सामने तड़फ रहा हो किसी बीमारी से, चलो हमारा ना भी हो, मनुष्य को भारी लगता है, ऐसे में क्या करेंगे, सकास देना। ये आदत बना दे सभी। बाबा ने जब से कहा था मुझे ख्याल आता है लेकिन क्योंकि भूल जाता है, कि जब कोई समाचार सुनो विनाश का, केवल समाचार न सुनो वहां वाइब्रेशंस दो। भाई हमने सुना अफगानिस्तान में भूकंप हो गया, 1200 लोग तो दिखा रहे पर मर गए होंगे 5000 मरने वाले और उनके घर परिवार संपदा मकान दुकान सब। तो हमने सुन लिया पकी अफगानिस्तान वाले मरे थे ही सारे, ऐसे मरने दो, सोचता है ना मन, लेकिन कैसे भी थे, अफगानिस्तान से ही भारत पे सबसे ज्यादा युद्ध हुए, अटैक हुए हैं, तो कैसे भी थे लेकिन आत्माएं तो है ना, हमें तो वाइब्रेशंस देने ही हैं, इसमें उनको भी राहत मिलेगी और हमें दोनों को फायदा हो, तब तो मनुष्य करता है ना, हमारे पुण्य बढ़ेंगे, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारा योग बढ़ेगा। चाहे 5 मिनट देने की प्रैक्टिस करें पर सकास देने की नेचर को भूलना नहीं, नेचर बना ले इसको, स्वीकार करना मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, वो रास्ता निकाल देगा। ये ब्रह्मा बाबा का जबरदस्त अनुभव अव्यक्त होने के लिए, और हम भी इसे अपने जीवन में बहुत नेचुरली ढाल दें, भगवान साथ दे रहा है। पसंद है तो जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना, यही तो होना है ना, परिवर्तन होना है, सबको घर जाना है, सबके हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं, जो कुछ हमें दिख रहा है वो कुछ और होता है और उसके पीछे का राज कुछ और होता है। हमें दिख रहा है ये क्यों हो गया और कुछ और होता है। देखो एक कहानी याद आ गई मुझे, सच्ची घटना, गांधीनगर है गुजरात में, गुजरात के कौन कौन बैठे हाथ उठाओ, अच्छा बहुत है, गांधीनगर कैलाश बहन रहती है, बहुत पहले की बात है, तब गांधीनगर बहुत डेवलप नहीं था, शायद 40 साल पहले की बात हो, ये 4 लेन 6 लेन ये सब इनका जमाना नहीं था। तो एक छोटी कन्या 13 साल की सेंटर में रहती थी, उसके बाप को वो एक ही लड़की थी, उसने कहा था सेंटर में रह के पढ़े, सेवा बहुत करती थी, स्वीट थी, सबका बहुत प्यार था उससे। दिवाली पे घर गई थी, बस आके रुकी, सेंटर थोड़ी दूर है जैसे यहां से और विशाल भवन का लास्ट कोना, इतनी दूर है बस, तो रोड तो यही होती थी, सिंगल नहीं डबल कहेंगे, तो बस जैसे ही आके रुकी तो ये उधर से उतरी, बच्चे जैसे दौड़ के पार कर लेते हैं ना सड़क, तो बस के आगे से दौड़ के सड़क पार करने लगी, ट्रक आ रहा था, दो हिस्से हो गए ऐसे, हाहाकार। हम भी सोचने लगे भाई बड़ा खराब हुआ, और कोई भी सोचेगा कितना खराब हुआ, बाप था और वो लड़की थी, बस अभी कैलाश बहन खुद संदेशी है, भोग लगा 3-4 दिन के। तो बाबा का उत्तर देखो, मैंने कहा ना हम कुछ और देखते हैं, प्रभु जी की प्लानिंग कुछ और होती है। तो कहा इस आत्मा का बाबा से बहुत प्यार था, लेकिन इसके पाप कर्म बहुत थे, तो बाबा ने 1 सेकंड में बिना कष्ट के नष्ट कर दिए। अब देख लो प्रभु जी की लीला, कष्ट तो हुआ ही नहीं, वो तो गिरी और गई, खून ही खून हो गया, दो हिस्से देख नहीं सकता था कोई। बाबा के लिए तो खेल है ये सब, वो थोड़े शरीर को देखेगा, मेरी प्यारी बच्ची मेरे पास आ गई, आओ बच्ची वेलकम, यही करेगा ना। तो कुछ रहस्यों को जानते हुए हमें सहज भाव से जीवन जीना है। बट्टी में आप ये सब सीखते जाना कि इस जीवन को अब सहज भाव से जीना है। जो क्लास कराते हूँ आप में से कहीं भी छोटी बड़ी, वो सबको सिखाएंगे सहज भाव से जीवन जीना। अब वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कामनाओं से दूर सब कुछ दिखाई देगा। अब तो केवल कोरोना का खेल हुआ है, लेकिन खेल तो बड़े बड़े चलने हैं। चलने हैं या नहीं, चलने चाहिए या नहीं? माताएं देख रही मुझे, कैसा खराब प्रश्न पूछ लिया, खराब है ना प्रश्न तो। लेकिन हमें तैयार होना है, और सभी को अपने मोह को ढीला करते चलना है। मोह बहुत सताएगा ना, मोह मानसिक रोगी बना देगा सबको। इसमें बहनों की बात नहीं, भाई बहने सब, मनुष्य से मोह होता है, बच्चों से भी होता है, संपदा से भी होता है, मकान दुकान से भी होता है। हल्का करते चले, मोह ऐसी चीज नहीं है कि निकाल के फेंक दो गया, लंबी साधना की जरूरत है इसके लिए। दूसरी चीज मुझे कहनी है, बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सभी को करना चाहिए अब से और आगे तक के लिए। सभी जो भिन्न भिन्न विघ्न जीवन में आ रहे हैं, परिवारों में आ रहे हैं, तो मास मास तो नहीं पर साल में कम से कम 3 विघ्न विनाशक भट्टी 21-21 दिन की कर लो सभी। महत्व समझ लो इसका, टीचर बहने जो बैठी हैं सबसे करा दो आप, भाई 3-4 मास में 21 दिन की भट्टी। भोग लगवाने पर सभी भाई बहने ध्यान दें। मैंने बहुत केसेज में अभी अभी नजदीक में, जब से कोरोना हुआ, तो 21 गुरुवार को भोग में कुछ भी देने का सिखाया। ठीक हो गई समस्या, बड़ी बड़ी समस्याएं ठीक हो, बहुतों के पास तो ज्यादा होता भी नहीं देने के लिए, कुछ नहीं तो एक सेब ही देव बाबा के भोग के लिए, लो बाबा, और वो भी ना हो तो एक सुंदर सा फूल ही दे दो, वो तो मुफ्त में तोड़ लेंगे कहीं से। प्रभु जी राजी होके अपनी नजर आपकी ओर कर देंगे, और उसकी नजर जिधर आ गई, नजर ही थोड़ा ही आती है, सखास आती है। तो जो भिन्न भिन्न तरह के विघ्न आ रहे हैं, अभी मैं सब क्लासेज में ये बात कभी भूल जाता हूँ, कभी याद रहती है, सुना देता हूँ, नहीं तो एक एक पूछता है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ उसमें, और ज्ञान में नहीं है तो शादी कराना पड़ता ही है उनको, लेकिन बहुत टेंशन हो जाती है। बच्चा कितने समय से प्रयास कर रहा अच्छी नौकरी के लिए, कंपटीशन दे रहा, बहुत होशियार है, आ ही नहीं रहा नंबर, अभी अभी मेरे को सिर ही भारी कर दिया, इतने लोग आ गए विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना कुछ बताए, सवेरे सवेरे कम से कम 100, टोली भी नहीं थी, मैंने मंगाई भाई टोली तो खिला दो। अब आजकल बड़ी प्रॉब्लम नहीं, फैशन है, क्लास न कराओ परंतु और कुछ फोटो जरूर खिंचा लो। उसमें भी कहते हैं अलग अलग खिंचाओ। अरे भाई मैं कहता अलग अलग, अब 100 लोगों में कम से कम 1 घंटा तो जाएगा। तो समस्याओं का समाधान, और ये भी होगा इससे अगर आप सचमुच करने लगे दिल से, तो समस्याएं आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मान लो आपने पहले 3 मास के लिए की विघन विनाशक भट्टी कर ली, तो अगले 3 मास में जो विघन आने वाले थे वो नष्ट। विधि, 1 घंटा योग फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे और मिस नहीं करेंगे। 200 मान पहले याद करेंगे योग से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, 3-4 बार। आपने देखा होगा मैं हर संकल्प से पहले मास्टर सर्वशक्तिवान जोड़ता हूं, क्यों भाई? उत्तर देंगे, जो नेक्स्ट संकल्प है उसमें पावर आ जाएगी बहुत इस संकल्प से। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, हमारी शक्तियां जग गई सोचते ही, विघ्न विनाशक हूं तो शक्तियां विघ्नों की ओर चलेंगी नष्ट करने के लिए। जिनको पतियों का बंधन है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बंधन मुक्त हूं और ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। सवेरे उठते ही 5 बार याद कर लेना। तो अव्यक्त बनना है, टॉपिक पर आ जाएं, क्योंकि अगर जीवन में विघ्न है तो अव्यक्त बनना तो छोड़ो, योग भी नहीं लगता। कभी कभी हमारी बहनें बड़े बड़े टॉपिक देती हैं हमें, यहां के लिए भी कर्मातीत अवस्था कैसे हो। मैंने कहा पहले ये तो पूछ लो जिनको क्लास कराना उनका योग कितना लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल हो, जिससे हरेक भाई बहन को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हम बड़ी बड़ी बातें कर दें, निर्मोही हो जाओ, माताओं को बहुत मोह है, कहां फंसी हुई हो, छोड़ो ये मोह ममता, होगा कुछ? उदास होकर उठेंगे क्लास से, क्या क्या बता दिया, हो गया नहीं? मैं जब मोह की क्लास चलती है माताओं को देखता रहता हूं, बेचारे सोच रहे हैं क्या करें, सहज काम नहीं है। क्यों नहीं है सहज? इसलिए साधना करनी पड़ेगी। देखो एक मां ने बच्चे को जन्म दिया, 3 साल तक तो भारी पालना करनी पड़ती है ना, सब अनुभव बैठे, तो उससे अटैच होना बड़ा नेचुरल है। उसकी हर जिद पूरी की, उसकी नहलाया धुलाया, उसकी गंदगी साफ की, पूरी तरह से जुड़ जाएगी मां बच्चे से, जुड़ जाएगी या नहीं? भाई लोग क्या कहते हैं? उससे हटना, और जब फिर माताओं की समस्या ये बहुत बड़ी होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी शादी होती है और बहू कहती है मां से कोई नाता नहीं। आजकल की नई समस्याएं, आज भी आ गए 2 सवेरे इसी की, माताएं लेके केस, अब चलो यहां से सब कुछ मेरा, फिर मां का हाल। मैं तो हंसी में कह दिया करता हूं, तुम्ही तो कहती थी बहू का मुंह देख लूं तृप्त हो जाऊंगी, अब जी भर के देख लो। अब वो देखना ही नहीं चाहती, हटाओ इसे मेरे पास से। ये करंट प्रॉब्लम्स, जब से एजुकेशन बहुत बड़ी, विदेशी कल्चर हमारे देश में भी आ गई। कल अखबार मैंने जरा सा पढ़ा तो एक बूढ़े और बुढ़िया का चित्र दिखाया हुआ था, 80-80 साल के, कहा 4थी बार डिवोर्स हुआ इस व्यक्ति का। मैंने कहा जिएगा तो एक बार और कर ही लेगा। वहां क्या प्रथा हो गई है कई क्रिश्चियन कंट्रीज में, व्यक्ति 80-85 साल का हो गया, अब अकेला कैसे रहे, तो लड़कियां उनसे शादी कर लेती हैं, मरना तो है बूढ़े को, सारी संपत्ति इनकी, फैशन हो गया है ये। वही विदेशी कल्चर भारत में प्रवेश कर गई है। नहीं तो भारत की कल्चर तो कितनी महान, सारा संसार इधर ही तो देखता था। तो ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के लिए एक तो की बहुत गजब की योग साधना, गजब की। ब्रह्मा जैसा तो महान तपस्वी कोई होता ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि हुए, सिद्ध पुरुष भारत में हुए, पर वो ब्रह्मा को तो याद ही करते रहे। शास्त्रों में कितनी कहानियां, कोई भी ब्रह्मलोक में पहुंचता है ब्रह्मा के पास तो उन्हें तपस्या में मगन पाता है। मुझे बात बहुत अट्रैक्ट करती थी, अपनी तपस्या का चाहत बढ़ाएंगे 4 घंटे से ज्यादा। तपस्या की बात छोटी में क्लासेज में करता हूं, आज फिर कर देता हूं। बाबा को भविष्य का नशा बहुत जबरदस्त था, वो ब्राह्मणों में थोड़ी कमी है। उसके लिए बाबा ने एक सरल स्वरूप दे दिया हमें, 5 स्वरूपों का अभ्यास। बाबा और ममा का तो प्रैक्टिकल था, पता चल गया था तू ये है तू ये है। नशा चढ़ गया पहले दिन से, वो उतरने का प्रश्न ही नहीं था। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास चिंतन के साथ रोज कर लेना चाहिए। अपने आदि स्वरूप को सामने लाओ, ये मैं हूं, सामने लाना है। 3rd eye के, 3rd netra के, मैं ये हूं। और चिंतन करना, जब मैं ये थी संपूर्ण निर्विकारी प्रकृति की मालिक थी, अथा धन संपदा थी मेरे पास, मुझे धन संपदा की ओर देखना ही नहीं पड़ता था, वो मेरी ओर देखती थी। कमाने की कोई टेंशन नहीं, ऐसे महान भाग्य के धनी थे हम तब। इसको बहुत बढ़ाएंगे। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कुछ गहरी बातें भी कर देता हूं, आपको उसमें से जो लेनी हो ले लेना। जो ये व्यक्त संसार है और व्यक्त देह है, व्यक्त बातें हैं, इनसे धीरे धीरे डिटैच न्यारे। हमारे ज्ञान और योग की बहुत बड़ी साधना है न्यारापन और प्यारापन। उस पे आज कल्चर चाहे नहीं है, पर बाबा के समय और अव्यक्त होने पे ये टॉपिक हमारे यज्ञ में बहुत चलता था। सबसे प्यार से भी रहो, प्यारे बद कर रहो, प्यार का लेन देन हो, लेकिन न्यारे, प्यार दिया और न्यारे हो गए। बाबा अपना उदाहरण देते थे, देखो मैं आ गया हूं यहाँ, अव्यक्त बाबा थे ना, 4 घंटे तुम्हारे पास हूं, लेकिन जब जा रहा हूं बस गए, कोई नहीं सोचना, ऐसा डिटैच। यहां है तो बहुत प्यार दे रहा है, प्यार का सागर छलक रहा है। जाना है आंखें बंद किए चले। पहले ये भोग आदि नहीं लगते थे जैसे शांति वन में लगता था हर बार। बाबा यहां आए या हिस्ट्री हॉल में आए, बस हुआ विदाई, दीदी दादी और कोई एक और मिलने आए लास्ट में छुट्टी देने, और 2-3 मिनट में रस्ते देके गए। तो न्यारापन और प्यारापन, आपके पास जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, परिवार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप छोड़ तो नहीं सकते, यूज भी करना। आपके पास सुंदर कार है, आपको यूज करनी, करें, लेकिन उसमें आसक्त ना हो जाएं। कल वो नहीं है, कल तेल बंद हो गया, होगा ये सब काम पूरा ही बंद, क्योंकि इन सब चीजों से हम डिटैच होके स्वर्णिम युग की ओर, पुष्पक विमानों की ओर चलेंगे ना, ये सब बंद होंगी, ताकि इनसे हमारी आसक्तियां हट जाएं। अपने को थोड़ा हल्का करते चलें, सब कुछ है तो भी आनंद, कुछ नहीं है बोलो पक्का। बाबा ने बताया एक बार, एक ही बार कही थी वो चीज, श्रेष्ठ योगी ज्ञानी आत्माओं का चिन्ह है 36 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं या दाल रोटी, समान आनंद। हजारों के बीच में भाषण करने को मिल रहा है या झाड़ू लगाने को समान सुख। बिना झाड़ू लगाने की सेवा दी थी तो चारों ओर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा। समान सुख, यह है संपूर्ण निरंकारिता, योग युक्त स्थिति, मैंपन का त्याग। तो व्यक्त जो चीजें हैं उनसे समझ कर थोड़ा सा हटते चले धीरे धीरे, धन की ओर आकर्षण होता है मनुष्य का, वैभवों की ओर आकर्षण होता है मनुष्य का, ज्यादा बढ़ता जाता है। और आजकल सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें है? मोबाइल में, अनुभवी है लगता सर। उससे भी थोड़ा डिटैच होते चले। विशेष रूप से मैं दो टाइम की बात कहूंगा, उठते ही और सोते समय आधा आधा घंटा पहले बंद। ये नियम आप अपने घरों में बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तो इसकी तो जरूरत भी थी, फिर आदत भी बन गई है। माता एक अभी आज ही शिकायत करने आई, बच्चा छोटा 8 साल का, तबीयत बिगड़ती जा रही है, मोबाइल छोड़ता नहीं, अगर छीन ले तो घर में उस जैसा तूफान कोई नहीं करता। तो हम सोचते हैं भाई मोबाइल ही दे तो शांति तो है, लेकिन उसका जीवन नष्ट। एक अभी आए, दो बच्चे आए, एक को -6 नंबर, दूसरे को -8। मैंने कहा पढ़ाई जो हुई है अभी मोबाइल से अच्छा है, अगर आपके पास पैसे हैं लैपटॉप दे दो, थोड़ा दूर रख के तो पढ़ेंगे, मोबाइल तो बिल्कुल पास, रेडिएशन इफेक्ट कर रहा है। जिसको ज्यादा यूज करना होता हो मोबाइल और कंप्यूटर काम वश, फैशन वश नहीं, वो पानी चार्ज करके पी लिया करें 2-3 बार मास्टर सर्वशक्तिवान से, तो उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा अपने को डिटैच करते चलें। कल एक प्रश्न आया था बहुत अच्छा, उसका उत्तर दे देता हूं। आप सभी गृहस्थ में हैं, और कई लोग ज्ञान और योग में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत चीजों से बिल्कुल किनारा कर लेते हैं, जबकि बाबा ने कहा हुआ न्यारे तो बनो लेकिन किनारा नहीं करना है। अब मैं उदाहरण देता हूं, मान लो आपके रिलेशन में शादी होने वाली है, अब आप ज्ञान में हैं, आपको पसंद नहीं है सब चीजें, लेकिन रिलेशन बहुत नजदीक का है, आपके बिना काम नहीं चलेगा। अब आप जैसे ही निमंत्रण है टाइम आया और आपकी उदासी, आपकी स्थिति बढ़ती जा रही, बिगड़ती जा रही है, वहां जाना पड़ेगा, 5-6 दिन बेकार हो जाएंगे, मुश्किल से तो स्थिति बनाई है, ये बाबा क्या झंझट कर दिया तुमने, होता है या नहीं? संकल्प बदल दो, बाबा मुझे सेवा का सुंदर अवसर दे रहा है, मैं अवश्य जाऊंगा जाऊंगी, और जो भी वहां आएंगे मेरे जाते ही उनकी टेंशन खत्म हो जाए ऐसा अभ्यास करूंगी, मेरे जाते ही मेरे चेहरे को देखकर वो बाबा की तरफ आकर्षित हो जाएं ऐसा अभ्यास करेंगे। विचार बदल दो तो उदासी भी खत्म, नेगेटिव संकल्प भी खत्म, और वहां जाके थोड़ा थोड़ा भी आप करेंगे तो बहुत गहरा इफेक्ट दूसरों पर पड़ेगा। मैं एक घटना 2-3 बार सुना चुका हूं, अभी अभी एक जगह छत्तीसगढ़ में एक परिवार है, दोनों ज्ञान में, एक लड़का वो भी ज्ञान में था, 20 साल से मृत्यु हुई उसकी, उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। मेरे को भी फोन करवाया, जानते हैं वो, जब उनका उछल रहा था सब लोग आए हुए थे श्रद्धांजलि वगैरह, तो कहा जो भी यहां आ रहा है, आते तो हैं सांत्वना देने या कुछ जैसे मृत्यु पर जाते लोग, पर कहता है यहां तो गहरी शांति हो गई, हम क्या कहें। और दोनों जो माता पिता थे उन्होंने अपनी स्थिति बहुत सुंदर रखी है, कि लड़का 20 साल का, और देखो उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति रखी। मैंने पूछा भाई कैसी स्थिति है, क्या संकल्प है, कहा कुछ नहीं, इस आत्मा का हमारे पास इतना ही पाठ था, बस हमने स्वीकार कर लिया। अब बाबा इसको किसी अच्छे कार्य के लिए भेज रहा है, हम इधर अच्छा काम करेंगे, वो उधर अच्छा काम करेगा। कितना सुंदर विचार है। हाय बाबा ने मेरे लिए ऐसा क्यों कर लिया, कहीं मैंने बाबा के बच्चों को देखा कहते बाबा ने मेरे पति को क्यों उठा लिया। मैंने कहा बाबा थोड़ा ही उठाता है वो तो जीवन देता है, बाबा तो सुख देने आया है। तो जरा अपने संकल्पों को बदल दें तो स्थिति बदल जाएगी। पहले ही संकल्प करना करते हैं ये करना पड़ेगा, अब बहुत मुश्किल हो गया, नहीं बस इतना ध्यान दें कि हम किस परिस्थिति में क्या सोच रहे हैं, किस घटना को परिस्थिति समझ रहे हैं या अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का आधार समझ रहे हैं, विचार कर लें। जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं वो हर चैलेंज से और पावरफुल हो जाते हैं, चैलेंज मान चुनौती, कोई समस्या आई और अनुभवी हो जाते हैं। और मैं एक बात बहुत दिन से कहता था, आज आप सबको भी कह रहा हूं, बड़ी गहरी बात है, हालांकि वो कोई भी समस्या जीवन में आ जाए उसके समाधान की प्लानिंग बाबा पर छोड़ दो जरा। ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर करेंगे हम भी, लेकिन पूरी प्लानिंग बाबा पर छोड़ दो, वो क्या करता है, और सुंदर अनुभव होने लगेंगे, उसकी मदद मिलने लगेगी। लेकिन उसमें बहुत विश्वास हो, उसकी प्लानिंग गड़बड़ वाली भी हो सकती है, समझिए ना, गड़बड़ वाली हमारी दृष्टि से गड़बड़ वाली, उसकी दृष्टि से तो वो परफेक्ट है। लेकिन हमें दूसरी चीज भी एक ध्यान रखना है, हर बुरी घटना से कुछ अच्छी चीज सीख लेनी है। प्रैक्टिस करेंगे सभी, जैसे बाबा साइंस का उदाहरण देते हैं, वेस्ट से बेस्ट बना देते हैं। फैक्ट्रियों में आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है, तो अव्यक्त होने के लिए व्यक्त भाव, व्यक्त चीजें, इन सब से थोड़ा थोड़ा मुक्त होना है योग के लिए। मैं पहले दो बातें आपको कहता हूं। एक, सभी भाई बहने, सारे संसार के भाई बहनों को करना है वैसे तो, अपने चारों ओर आभा मंडल बनाया करें। जानते हैं आभा मंडल सभी शब्द को, दूसरा शब्द है प्रभा मंडल, इंग्लिश में है ओरा, और ये आभा मंडल सबके चारों ओर है ही। जो लौकिक संसार में लोग हैं उनके चारों ओर भी है, रंग अलग अलग होते हैं, किसी का यहीं तक होता है तो किसी का बहुत दूर तक, और किसी का बहुत बहुत दूर तक, अश्रत्नों का सारे संसार तक, विजय रत्नों का भारत तक, अपने अपने एरिया तक। ये प्रभा मंडल सबका होता है, इसका आधार है हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारी शक्तियां, हमारे संकल्प। तो देखो, दो तरह से आभा मंडल सभी भाई बहने रोज बनाएंगे, चाहे आप इसमें एक एक मिनट देना, कम से कम 2-3 मिनट देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ साथ अभी बना लो, करो सभी अभ्यास। संकल्प करें मन में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये लाल किरणें मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर पावरफुल विशाल आभा मंडल बना रही हैं। देखें अपने चारों लाल किरणों का आभा मंडल। मैं इसके बीच में हूं, दूसरा अभ्यास मैं आत्मा परम पवित्र हूं। या मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। मैं इसके बीच में हूं। ओम शांति। पसंद है? इससे सेफ रहेंगे, कलयुग के इफेक्ट से मुक्त, भटकती आत्माओं के प्रभाव से भी मुक्त। आजकल ये प्रकोप भी बहुत बढ़ रहा है, भटकती आत्माओं का प्रकोप तूफानी बनता जा रहा है। जो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते उन पे भी अटैक हो रहे हैं। अब मानना पड़ता है बेचारों को, कम से कम एक एक बार सवेरे शाम या जब भी आप योग में बैठे पहले ये कर लिया करें, फिर योग अभ्यास करें। अच्छा होगा कि इस औरा के साथ ही मैं आत्मा जा रही हूँ परम धाम, या मैं फरिश्ता जा रहा हूँ सूक्ष्म लोक, या मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, मेरे चारों ओर औरा है। और ये भी याद रखेंगे कि जो अभ्यास हम बहुत कर लेंगे, जिस स्मृति में हम ज्यादा रहेंगे ना रोज, अब वो दिन नजदीक आ गए हैं, उसी स्वरूप का साक्षात्कार होगा। बहुत सुंदर खेल अभी तो बाकी है ना सृष्टि पर, विनाश की बात ही नहीं है। बहुत सुंदर खेल, जय जयकार का खेल, अतिंद्रिय सुखों का खेल। फिर डांस हुआ करेगा। मैं जब बहने सेवा में गई ना, तो छतों पे गीत बजा के डांस किया करती थी। लोग बड़ा बुरा मानते थे, ब्रह्मा कुमारियां डांस कर रही हैं, फिल्मी गीत बज रहे हैं। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से नहीं। अब इधर तो हम भगवान से बातें कर रहे हैं, लोग सोचते हैं ये मनुष्यों की गीत बजा रहे हैं। फिर डांस ही डांस होगा, हर एक के मन में भी कौन सी यादगार है इसके लिए हमारी? एक है श्री कृष्ण सांप के सर वो फनों पर डांस कर रहा है। गेम चली गई थी ना यमुना में। इसका अर्थ है जिन्होंने पांचों विकारों को अधीन कर लिया वो आत्माएं डांस करेंगी। दूसरा महादेव जी का डांस, ऊपर वो डांस करेंगे, नीचे हम डांस करेंगे। महादेव जी और कुछ नहीं, ऐसे नहीं ऊपर कुछ कर रहा है, विनाश का प्लान बना रहा है। हमारी तपस्वी स्थिति। जब हम अतिंद्रिय सुख में डांस करने लगेंगे तो इधर प्रकृति भी डांस करने लगेगी। नीचे का माल ऊपर, बहुत है माल नीचे, सतयुग सारा नीचे ही तो दबा हुआ, महल वहल सब ऊपर आ जाएंगे। तो बहुत खुशी में रहने की प्लानिंग करें, ऐसा आभा मंडल बनाएं। और मैं कोरोना काल में एक संकल्प देता था, मुझे याद आ गया है, आप में से जो बहुत अच्छे चिंतक हैं, बहुत अच्छा अभ्यास और साधना करने वाले हैं, कौन कौन है ऐसे? कोई नहीं उठाता, क्या बात है? डर रहे कि बड़ा भारी प्रश्न पूछ लिया है, मुझे पता है। जो बहुत अच्छे चिंतक हैं और बहुत अच्छी तपस्या करने वाले हैं, उन्हें एक संकल्प करना चाहिए कि विनाश काल में मुझे कौन सा पार्ट बजाना है। इसको विजन कहते हैं, अपना चित्र बना लो, विजन, कि मैं अपनी छत पे खड़ा हूं और दूर दूर लोग मुझे फरिश्ते रूप में देख रहे हैं, मेरी आंखों से तेज निकल कर सब पर पड़ रहा है, मैं बाजार गई हूं लेकिन चली हूं नशे से, मैं इस देवी हूं, तो बाजार में लोगों ने कहा अरे ये देवी कहां से आ गई, यहां जय जयकार हो जाएगी, ये खेल चलने वाला है बहुत ज्यादा। तो जिनकी अच्छी स्थिति होगी वो साक्षात्कार कराएंगे, बाकी बहुत बहुत करने वाले भी होंगे। तो हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाते चलना है, देह से न्यारेपन की फीलिंग को बढ़ाते चलना है। ये सब हमारी साधनाएं हैं, ये अभ्यास हैं, ये आप ही नहीं हो जाएगा, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो छोटी सी प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, कुछ लंबी चौड़ी नहीं करो, लेकिन ज्यादा बार कर लो। मैंने सिखाया कल परसों एक क्लास में, बहुतों ने हाथ उठाया हमारा योग नहीं लगता। मैंने सिंपल 7 दिन का प्रोग्राम दिया, अगर 7 दिन आप ये कर लो तो एक रास्ता भी आपको मिल जाएगा और लंबी चौड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। पहला दिन, मैं आत्मा ये मेरा शरीर, लेकिन बहुत बार, मैं तो कहा हजारों बार याद कर जाओ, हजारों बार होगा तो नहीं, बुद्धि भटक जाएगी इधर उधर, हर घंटे में 10 बार जरूर कर जाओ। देखो सभी संकल्प शांत, कामकाज में कर लो ये। दूसरे दिन का संकल्प ले लो, मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूं, लगातार करने लगो, मैं महान। थोड़ी देर में आदत सी बन जाएगी, वो अंदर चलने लगेगा, काम काज होता रहेगा। तीसरे दिन ले लो, मैं शिव शक्ति हूं या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। चौथे दिन ले लो, मैं फरिश्ता हूं। ऐसे 7 दिन के प्रोग्राम बना दो, एक ही चीज को जैसे रटते रहो आप, ये ना सोचो अनुभव होगा या नहीं होगा, मंत्र हो गया वो एक, उसका इफेक्ट बहुत भारी होगा। व्यर्थ संकल्प शाम तक जाते जाते शांत हो जाएंगे और योग लगने लगेगा। 7 दिन अगर ये मेहनत कर लेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो अपने स्वमान को बढ़ाते चलेंगे सभी, स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे। स्वमान राजयोग की एक बहुत सहज साधना है, भारी नहीं है ये, बस उसमें भी यही है कि जो संकल्प हमने लिया है हम उसे कितनी गहराई से स्वीकार कर रहे हैं। मैं शिव शक्ति हूं, या दूसरा इजी संकल्प, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। इसे हम स्वीकार कितना कर रहे हैं या बोल रहे हैं बस, मैं सचमुच इस देवी हूं, और माताओं को मैं जो दूसरी बात कह रहा था वो मैं करा रहा हूँ बहुत आजकल, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। इससे आपका घर तीर्थ बन जाएगा, ये कोई रटने की बात नहीं। दिन में 5 बार भी आप इस गहरी फीलिंग में आ गए, मैं इस घर, देखो अपना ये घर मेरा मंदिर है, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, देखना रिजल्ट हो सकता है शायद। आजकल तो मंदिर बनने लगे ना, ऐसा महादेव पार्वती का पूरा परिवार भी साथ में, तो आपका भी परिवार मंदिर में है ना, ऐसा कर लेना। जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट बात, मनुष्य का लक्ष्य। बहुत लोग बिना लक्ष्य के चलते हैं। लौकिक का तो लक्ष्य भाई लोग सभी बनाते होंगे, बिजनेसमैन कौन कौन बैठे हैं हाथ उठाना, बिजनेस, क्या आपको फैक्ट्री है या बिजनेस, लक्ष्य बनता है या नहीं? गुजराती बिजनेसमैन हाथ उठाना, गुजरात वाले, ठीक है। अभी दिवाली आ गई है, दिवाली के 5 दिन तक दुकान बहुत जबरदस्त चलने वाली है, लक्ष्य बनाते हैं या नहीं? या ऐसे ही भाई खोल लेंगे, रोज 11 बजे खोलते हैं, आज भी खोल लेंगे, अब तो सोएंगे ही नहीं रात को, ज्ञान योग छोड़ देंगे, दुकान नहीं छोड़ेंगे, होगा या नहीं? वो तो अच्छी बात है आपकी, मैं लक्ष्य की बात कह रहा हूँ कि भाई 5 ही दिन तो हैं, फिर आप घूमने चलेंगे। हमारे यहाँ गुजरात वालों की ये रस्म है, बिजनेस करके फिर आबू आ जाते हैं, बाहर भी बहुत लोग, कितने हजार होते हैं आबू में, सड़कों पे गाड़ी रखने की जगह नहीं मिलती किसी को, पुलिस तैनात होती है बहुत ज्यादा। गुजरात में घूमने फिरने का ज्यादा एक प्रथा जैसी है, तो अच्छी बात है ये। लक्ष्य के बिना मनुष्य का पुरुषार्थ तेज नहीं होता। पुरुषार्थ के लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, हाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने, उत्तर दिया श्रेष्ठ योगी बनना। मैं और थोड़ा हल्का कर देता हूं, ये तो सुंदर लक्ष्य है। आप 3 मास का लक्ष्य बना ले, 3-3 मास के लक्ष्य बनाएंगे, मुझे 3 मास पर चिंतन से मुक्त रहना है, देखो कितना मजा आएगा आपको। मुझे 3 मास रोज इस तरह योग कर लेना, छोटी सी प्लानिंग, 3 मास के लिए मेरे ये 200-300 मान है, सहज पुरुषार्थ, सब कुछ कर्म में करना है, बैठना थोड़ा थोड़ा, बैठना भी जरूरी है। दूसरे 3 मास के लिए ले लो, मुझे 3 मास पूर्ण संतुष्ट आत्मा बनकर रहना है। दूसरे 3 मास ले लो, 3 मास मुझे खुश रहना है, कोई मेरी खुशी को छीन ही नहीं सकेगा। अगले 3 मास ले लो, मुझे क्रोध पर पूरी तरह जीत पा लेनी है 3 मास में, उसके लिए योग कर लो, जिस कारण क्रोध आता है उस पे वर्क कर लो थोड़ा, बहुत अच्छे अनुभव। तो 3-3 पॉइंट में 3-3 मास का लक्ष्य खुद बनाना है, दूसरों का लक्ष्य आपको फलीभूत नहीं होगा, ये सब याद रखेंगे। अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग अपने अपने अनुसार खुद करनी चाहिए। जैसे कई कुमार आते हैं, शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, कभी रात को, कभी दोपहर, कभी दिन, अमृत वेला मिस होता रहता है, अब बेचारे उदास रहते हैं, ये अच्छी नौकरी मिली, अमृत वेला ही मिस होता है रोज। मैं उनको छोटी सी बात कहता हूँ, खुश हो जाते हैं, सोना तो पड़ेगा ही ना अगले दिन काम करने के लिए, थोड़े जागते रहो। जब सोकर नींद पूरी करके उठो तब से आपका अमृत वेला है, आनंद ले लो, 1 घंटा दे दो अपने को, ये नहीं उठ गए देर हो गई अब योग का तो समय बीत गया, ये संकल्प नहीं। 2 बजे आप दिन में उठे, सो गए थे सवेरे, रात को ड्यूटी थी, 2 बजे उठ के, अब 2 से 5 आपके पास है, 3 घंटे बहुत लंबा समय है, ना दो भी भोजन बनाना कुमारों को वो भी कर लो, इस सब को योग युक्त बिताओ। अमृत वेले का सबसे बड़ा महत्व तो पता क्या है, वो सवेरे तो प्रकृति शांत होती है, वो तो अलग रूप है, लेकिन जब मनुष्य उठता है उसका अंतर मन शांत होता है। अब दिन में 3 बजे भी सो के उठे हैं, शांत होगा गहरा शांत अंतर्मन, एक्टिव अंतर्मन। उस टाइम आप जितने अच्छे अभ्यास करेंगे वो भारी इफेक्ट डालेगा जीवन पर। इसलिए सवेरे का समय तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर नौकरी वश कभी इस तरह की परिस्थिति आती है तो अपने पुरुषार्थ की स्वयं प्लानिंग कर लो। हर एक अपनी अपनी अलग अलग प्लानिंग करे, अलग अलग लक्ष्य बनाए। संगठन का लक्ष्य भी बहुत सुंदर होता है, पर वही बात है कि सब उसको फॉलो कर पाए या नहीं, तो अव्यक्त स्थिति की ओर हम बढ़ेंगे। और ये ध्यान देना है सभी को कि लंबे काल का अभ्यास ही अंत में काम आता है। वैसे भी नेचुरल सब जानते हैं ना, लंबे काल का अभ्यास ही अंत में काम आता है, काम आएगा। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण तो खराब है थोड़ा सा, पर फिर भी जो कुछ होगा वो दे देता हूं। आपने बहुत अच्छा योग किया है, जीवन भर तैयारी की है कि अंत में मुझे बाबा के अलावा कुछ याद ना आए। अचानक धरती हिलने लगती है जोर से, हिलेंगी ना, बहुत हिलेंगी। अब आप देखेंगे माता है ग्रस्त में, बच्चों को बचाऊं पहले, तो बुद्धि कहां गई, बचा पाएंगे? मैं भाग दौड़ करूं बाबा से दूर, बाबा ने सिखाया हुआ, धरती हिलेगी, योगयुक्त हो जाओ, बच्चे भी बच जाएंगे और आप भी। और अगर शरीर छूटा, सर्वश्रेष्ठ गति। ये प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम कुछ चीजों में विश्वास करें। अब एक बात और कह देता हूं, लास्ट तो मैंने कह दी, स्थिति अच्छी होने से, ध्यान से सुन लेंगे सभी, कल परसों अव्यक्त मूली थी ना संडे को, उसमें भी था ये, कम खर्च, उसके रहस्य बताए कि इसके प्रयोग करो। जब ये मूली चली थी मैं बहुत प्रयोग किए थे भोजन बनाने पर, एक मैं छोटा सा सुनाया करता हूं। सब्जी कट नहीं रही थी, बहुत देर हो गई, 11 बजे कट के मिली, अब 1 घंटे में तो बनती नहीं थी बहुत ज्यादा सब्जी, सर 900 लोग थे, हम 4-5 भाई थे, मैंने सबको शांत किया, जब आएगी तभी शुरू करेंगे। सब योग किया अच्छा और सब्जी चढ़ा दी और बिल्कुल साइलेंटली, कोई टेंशन नहीं कब ये बनेगी, तैयार होगी। और सबने देखा वो 12 बजे तक तैयार हो गई, 12 बजे खाना देना होता था। आप सब प्रयोग करें छोटे छोटे कामों में, कि अगर हम संकल्प कम खर्च करेंगे, बोल कम खर्च करेंगे, तो कार्य बाला नसीन होगा, एक्सीलेंट अनुभव करें इसके। तो स्थिति जितनी अच्छी होगी, कार्य उतने ही निर्विघ्न सहज सफल होंगे, लौकिक की बात कर रहा हूं। तो ध्यान ज्यादा देंगे स्थिति पर, ताकि परिस्थिति आए ही नहीं, क्योंकि परिस्थिति अगर हमें घेर लेती है तो स्थिति तो पूरी नष्ट हो जाती है। स्थिति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो स्थिति श्रेष्ठ, परिस्थितियां समाप्त। ओम शांति। दोनों सिग्नल आ गए हमारे, दो सिग्नल हैं हमारे, एक ये एक बहन जी।
तमन्ना है।